रामायण
मैं काल हूं। अभी श्री राम के शिविर में अंगद की वापसी के बारे में विचार विमर्श चल ही रहा था कि तभी दक्षिण दिशा से उल्काओं जैसे चमकते चार पिंड भारी गर्जना के साथ सैनिकों के शिविर में गिरे। कुछ पल के लिए तो वहां भय का वातावरण बन गया। सैनिकों को लगा कि रावण ने उन पर आक्रमण कर दिया है, पर जब श्री राम ने उन चमकते पिंडों को देखा तो उनके मुख पर मुस्कान आ गई। और इससे पहले कि वो कुछ कहते कि तभी लंकेश भ्राता विभीषण ने सारा भेद खोल दिया।
आप सभी भयभीत ना हो, ये ना तो प्रक्षेपास्त्र है और ना ही लंकापति रावण द्वारा फेंके गए वज्र। ये लंकेश के मुकुट के टुकड़े हैं जो यहां गिरकर खंड खंड हो गए हैं।
परंतु रक्षेश, ये इतनी दूर कैसे चले आए?
ये तो अंगद के आने के बाद ही पता चलेगा।
मैं आ रहा हूं प्रभु, मैं आ रहा हूं।
आओ अंगद, आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे।
सब ठीक तो है ना अंगद?
और हमारे शांति प्रस्ताव का क्या हुआ अंगद?
लंकेश किसी प्रकार की संधि नहीं चाहते प्रभु, उन्हें युद्ध चाहिए, केवल युद्ध।
हम जानते थे ऐसा ही होगा। अब ये बताओ कि ये रावण के मुकुट के टुकड़े यहां कैसे आए?
आपकी कृपा से प्रभु।
ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु श्री राम तो यहां है और उन्होंने कुछ किया भी नहीं।
हुआ ये कि जब रावण ने मेरी बात नहीं मानी तो क्रोध में मैंने पूरी शक्ति से भूमि पर अपना पैर पटका। इससे पूरा राजभवन कांप उठा। रावण का मुकुट उसके सिर से उड़ गया और जब उसके सभासद उसे उठाने को दौड़े तब मैंने उसे उठाकर सुबेल पर्वत की ओर फेंक दिया।
धन्य है युवराज अंगद, धन्य है।
पर इस बात से तो रावण के दरबार में खलबली मच गई होगी।
हाँ महाराज, वो तो अभी तक इस घटना से उभरे भी नहीं होंगे।
आज हमें पता चला कि हमारे सैनिक कितने दुर्बल हैं। कोई एक साधारण से वानर का पैर तक नहीं हिला सका। एक और वो वनवासी राम हमारे भय से बार बार शांति प्रस्ताव भेज रहा है और दूसरी ओर हम अपना ही उपहास कर रहे हैं।
महाराज लंकेश, वो अवश्य कोई मायावी वानर था। अवश्य ही उसने अपना पैर किसी माया शक्ति से भूमि पर टिका दिया था।
ये तुम नहीं, तुम्हारा कुचला हुआ पौरुष बोल रहा है। सारा त्रिलोक जानता है कि मायावी शक्तियों के स्वामी राक्षस हैं। उन्हीं मायावी शक्तियों से हमने सीता का हरण किया और लंका तक ले आए,
और अब उन्हीं मायावी शक्तियों से हम राम की सेना को परास्त करेंगे।
भ्रम में मत जियो प्रहस्त, तुम्हारे इसी भ्रम ने हमारी लंका राख कर दिया है।
चिंता न करें पिताश्री, आपके पुत्र मेघनाथ के होते हुए अब कोई लंका को छू भी नहीं सकता। लंका अपराजेय थी और रहेगी।
हम तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहते थे पुत्र। इंद्रजीत मेघनाथ के होते हमें कोई नहीं परास्त कर सकता। हम अपनी बहन शूर्पणखा का प्रतिशोध लेकर रहेंगे।
इस खेल में मेरी विजय होगी शर्मा भाभी। केवल और केवल शूर्पणखा की विजय। आप तनिक भी चिंता ना करें भाभी, भैया विभीषण एक महाशक्ति के साथ हैं। उस महाशक्ति के साथ जिसे मैंने अपने पति के रूप में वरण किया है।
किंतु तुमने ऐसा क्यों किया शूर्पणखा? लंकेश तो तुम्हें अपने प्राणों से बढ़कर मानते हैं, फिर जानबूझकर उनके विनाश का आयोजन क्यों किया तुमने?
बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी, पर क्या उससे पहले आप ये बता सकती हैं भाभी कि भैया विभीषण ने लंकेश का साथ क्यों छोड़ा।
ये तो पूरी लंका जानती है कि मेरे पति विभीषण और लंकेश के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। मेरे पति कभी अनीति का समर्थन नहीं कर सकते, इसीलिए वो श्री राम के साथ हो गए, जहां नीति है धर्म है।
उनके तो केवल विचार ही आहत हुए थे भाभी, मेरी तो दुनिया ही उजाड़ दी लंकेश ने। मैं कैसे भूल सकती हूं कि वो मेरे पति का हत्यारा है। मेरे हृदय में प्रतिशोध की अग्नि उसी समय से जल रही है भाभी। आपको नहीं पता भाभी कि वो केवल मेरा पति ही नहीं, मेरा सब कुछ था, सब कुछ। मुझे अभी भी स्मरण है।
शूर्पणखा, तुम अभी तक इस वीराने में मेरी प्रतीक्षा कर रही थी।
मैं जानती थी कि तुम अवश्य आओगे।
और मैं नहीं आता तो?
मेरा विश्वास मुझे कभी धोखा नहीं देता।
ओह, इतना विश्वास?
ये विश्वास मुझे तुम्हारे प्रेम ने ही दिया है।
आओ चलो कहीं चलते हैं।
पर कहाँ? महल में तो जा नहीं सकते, फिर कहाँ चलेंगे? इतनी रात में मिलने का और कौन सा स्थान हो सकता है?
जब तक तेरा भाई रावण है तब तक तो मैं महल में नहीं जा सकता।
उससे डरते हो?
नहीं, वो बहुत स्वार्थी और ढोंगी है। उसकी दृष्टि मेरे राज्य पे लगी है, और फिर हमारी राक्षसों से शत्रुता भी रही है।
विभीषण की पत्नी शर्मा से अपनी प्रेम कथा कहती शूर्पणखा बहुत भावुक हो गई। अपने प्रेमी का स्मरण करके उसकी आंखें भर आईं। शर्मा को भी लगा कि लंकेश के प्रति शूर्पणखा के हृदय में बदले की भावना अनुचित नहीं है। न जाने कितनी आशाएं थी उसे अपने लंकेश जैसे भाई से, पर लंकेश ने क्या किया?
किंतु मैं अपने भाई को कैसे छोड़ सकती हूँ?
तुम क्यों छोड़ोगी उसे?
लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं तो चाहती हूँ कि तुम डंके की चोट पर लंकेश को बता दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो।
समय आने पे बता दूंगा।
किंतु हम इस तरह छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे?
जब तक हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम है।
जानते हो, मैंने भाभी मंदोदरी को सब कुछ बता दिया है।
तब तो लंकेश को भी सब कुछ पता चल जाएगा।
रक्षेंद्र, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है।
क्या मेरी भार्य मंदोदरी को मुझसे बातें करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है? वैसे किस संबंध में बात करनी है?
शूर्पणखा के संबंध में।
कोई चिंता की बात?
चिंता नहीं, पर विचार करने की बात है। मैं उसके भावी जीवन और विवाह के संबंध में कुछ कहना चाहती हूँ।
हाँ, मैं उसके विवाह के विषय में विचार ही कर रहा था, किंतु वो हम तीन भाइयों की अकेली बहन है। उसका विवाह किसी अच्छे राजकुल में होना चाहिए।
लेकिन महाराज, अब आप ये अवसर चूक गए हैं।
क्या? ऐसा क्या हो गया?
वो किसी से प्रेम करती है स्वामी।
प्रेम? कौन है वो?
अश्वपुरी का सरदार विद्युजीव।
वो विद्युजी?
वो शूर्पणखा से प्रतिदिन मिलता है रक्षेंद्र। दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं।
किंतु शूर्पणखा ने मुझसे अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं?
शायद इसलिए कि कहीं आप उस प्रेम में बाधा ना बन जाए।
यही तो भ्रम है उसका। लंकेश अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है।
तो क्या आप वो जो कर रही है उसका समर्थन करते हैं?
अवश्य, इसमें समर्थन ना करने जैसा क्या है?
किंतु मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। शूर्पणखा अभी उतनी सयानी नहीं हुई है कि प्रेम के उचित और अनुचित को समझ सके। और फिर विद्युजीव चोर की तरह इस लंका में रहता है। क्या आप चाहते हैं कि शूर्पणखा का होने वाला पति एक चोर हो?
मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि अश्मपुरी में उसके बहुत समर्थक हैं। वो एक होनहार युवक है, आखेत उसे बहुत प्रिय है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शूर्पणखा उसे चाहती है।
इसका अर्थ है शूर्पणखा कि लंकेश विद्युजीव के साथ तुम्हारे विवाह के लिए सहमत थे?
हाँ भाभी, वो अपनी राजनीतिक लालसा पूरी करने के लिए मेरा विवाह विद्युजीव से करवाना चाहते थे।
इसमें कौन सी राजनीतिक लालसा हो सकती है?
वो चाहते थे कि मेरा विवाह विद्युजीव से करा के वो उसके राज्य को हड़प कर लंका का विस्तार कर सके।
किंतु इसमें बाधा क्या थी?
मेरा पति विद्युजीव बहुत स्वाभिमानी था भाभी। वो पहले ही जानता था कि लंकेश को केवल अपनी सत्ता से मोह है और इसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। मुझे दुख तो इस बात का है भाभी कि मैं उनकी चाल कभी समझ ही नहीं सकी, वरना मैं उसी समय सावधान हो जाती जब उन्होंने पहली बार मुझे विवाह के संबंध में बात करने के लिए बुलाया था।
भैया, आपने मुझे याद किया।
हाँ बहन, तेरे कल्याण के लिए ही याद किया है।
क्या कोई विशेष बात है?
हाँ, आज मैं तुझसे तेरे प्रेम जीवन की बात करना चाहता हूँ।
हाँ भैया, आपको
भ्राता रावण के मुख से अचानक प्रेम की बातें सुनकर शूर्पणखा चौंक गई। वो समझ नहीं सकी कि लंकेश उसके प्रेम पर पहरे बिछाना चाहता है या उसे समर्थन देकर उसका विवाह करना चाहता है। वास्तव में शूर्पणखा अपने भ्राता लंकेश के छल से पूरी तरह अनजान थी। रावण ने शूर्पणखा को भरोसा दिलाया और वो आश्वस्त हो गई।
रामा